तो इस पर हम सुनेंगे आदरणीय सूर्य भाई जी से सहज कर्म योगी जीवन।
ओम शांति। आप लोग बहुत सुन रहे हैं, याद रह रहा है या पूरा पिछला डिलीट होता जा रहा है? है, याद है? तो जीवन हो तो ऐसा, कैसा बताओ, दो चार बातें बताओ। जीवन कैसा हो? सुख शांति से भरा हुआ। बहने योग युक्त जीवन, बोलो, प्राप्ति संपन्न जीवन। ठहरो बहने, पवित्रता से भरा हुआ जीवन, बोलो भाई लोग, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। वाह, आपने तो सारा ही मांग लिया। अच्छा बहने, हैं? दो दिन से जैसी अनुभूति वैसा जीवन। तो बाहर जाके क्या होगा? जब आप अपने घर जाएंगे तो बोलो कैसा रहेगा? बेफिक्र बात सा। हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें सीख ली आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, भिनकोड़ी बात सा। अच्छा, तो हम सभी को कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं और कर्म योगी जीवन बनाना है। कर्म योगी जीवन का अर्थ होता है कर्म करते हुए भी अपने परमपिता से जुड़े रहें। लोग तो ऐसा ही करते आए भक्ति में भी, कि कामकाज पूरा हुआ फिर भक्ति करेंगे, या जो साधना करते थे उनका भी ऐसा ही होता था कि कर्म पूर्ण हुआ तो साधना करेंगे। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है? आप सब देखो, ध्यान दो, आपके अपने जीवन को देखो। जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म के बहुत सारे संकल्प दिमाग में छाए रहते हैं, होता है, उल्टे सुलटे टेंशन के, चिंताओं के। आपस में मिलके काम करते, आपस में एक दूसरे के व्यवहार के बहुत सारे संकल्प दिमाग में छाए रहते हैं। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, रोज का भी देखो, रोज सवेरे हम कार्य में लग जाते हैं, घर के काम भी करते हैं, अपने भी करते हैं, फिर अपने काम धंधे जो व्यवहार है, तो सवेरे से शाम तक कितना दबाव आ जाता है दिमाग पर। और ऐसा दबाव रोज रोज बढ़ते हुए, अगर किसी की आयु 60 साल हुई है तो 60 इयर्स में कितना दबाव हो जाएगा। ये कारण है मन भटकता है। कर्म योग का अर्थ होता है, इसका इफेक्ट होता है कि कर्म करते जब हम कुछ और भी याद रखेंगे तो कर्म का बुरा इफेक्ट जीवन पर नहीं होगा और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, कर्म अच्छे हो जाएंगे। हम ये भी याद रखें, जब तक मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तब तक उसका मन भी स्थिर होता नहीं। क्या विचार है? ठीक बात है। कर्म अगर कोई गलत करता रहे और सोचे उसका योग भी लग जाए, होगा नहीं। तो कर्म योग का अभ्यास करने से कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता, ये बहुत बड़ा लाभ होता है। तो कर्म जब मनुष्य करता है तो कर्म में उसकी बुद्धि भी लगती है, लगेगी ही जरूर। आप घर में खाना बनाएंगे उसमें इतनी बुद्धि लग जाएगी कि और कुछ याद रहेगा नहीं। आपको दुकान है, अब दुकान पे जाएंगे, इतनी बुद्धि लग जाएगी और कुछ याद रहेगा नहीं। लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम कर्म करते हुए बुद्धि अपने परम पिता से भी लगा सकते हैं। जैसे सबको रोज का अनुभव है, जब हम काम करते हैं बुद्धि और कहीं भी घूमती रहती है या नहीं? बहुत घूमती है। काम एक कर रहे होंगे, बुद्धि दूसरी तरफ घूम रही होगी। बस ये जो बुद्धि दूसरी तरफ घूमती है, इसको वहां से निकाल कर परमात्मा में लगाना, ये कला हमको बढ़ानी होती है। इस कला का विकास करना है तो मैं आपको छोटी छोटी बातें सामने रख देता हूँ, सीख लेंगे आप और कर्मों में उनका अभ्यास करेंगे तो सारा दिन काम करके भी आपको शाम को ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया। हल्के, नो टेंशन, चिंताओं से मुक्त, छोटी मोटी बातों के इफेक्ट से मुक्त, ऐसा अनुभव होने लगेगा। तो पहली चीज जो आप यहाँ बार बार सुन रहे हैं और जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आत्मा का ज्ञान होने के बाद हमें आत्मा का अभ्यास करना है, क्या फायदा होगा? विचार करो, क्यों ये आत्मा का अभ्यास आवश्यक है? कल हमने एक छोटी बात की थी जो बहुत बड़ी भी है, कि आत्मा के जो सातों गुण हैं वो हमारे जीवन में आने लगेंगे। दूसरी बहुत बड़ी चीज होगी, हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, चाहे वो कर्मों में एकाग्रता, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में एकाग्रता, आप कहीं कार्यरत हैं वहां आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, मन का भटकना बहुत कम होने लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप करके देखना, आप ये अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी, आप कर सकते हैं अपने कार्यों में। अगर आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं, या परिवार में और कोई व्यक्ति आपकी बात सुनता नहीं है, ये तो होता है ना परिवार में, संगठन में ये रोज होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। आपको अनुभव होगा आपकी बात सभी सुनने लगे, आत्मिक स्थिति का ये बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और जितना जितना आपको ये फीलिंग होगी कि मैं आत्मा हूं, देह अलग है मैं अलग हूं, इसको कहते हैं देह से न्यारे, उतना ही सबके प्यारे बन जाएंगे। अनुभव होगा, सब आपको प्यार की नजर से देखने लगे, जो संसार में लोगों की नजरें बहुत खराब हो गई हैं या नहीं, ये बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, उल्टी दृष्टि बहुत हो गई है। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे बीच बीच में, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इतना ही, मैं एक दो अभ्यास ही आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आपको प्यार की फीलिंग सब हमारे हैं बहुत होने लगेगी। और ये चेंज सबको बहुत करनी है। आप खुद भी अपने को देखो, हमें दूसरे लोग कैसे लगते हैं? सारा संसार अच्छा लगता है या ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, कैसे लगते हैं हमें सारे लोग? करो विचार सभी, कैसे लगते हैं आजकल सभी लोग? बोलो, अच्छे लगते हैं? हाँ बोलो बोलो, ठीक बोला, अच्छे लगते हैं। और मैंने बोलो, चुप हो गई मैंने, तो चुप काट तो मैं समझता हूं। कुछ अच्छे कुछ खराब, ये उत्तर सबसे अच्छा, कुछ अच्छे कुछ खराब। आप एक चीज महसूस करेंगे, यदि आपको सब अच्छे लगेंगे तो आपका मन कैसा रहेगा, और यदि आपको बहुत लोग बुरे लगेंगे तो मन कैसा रहेगा? मन में एक विशेष अशांति रहेगी आपके, बिना मतलब के, बिना कारण के अवगुणी दृष्टि रही और खुशी गायब हुई, ये अनुभव होगा। और अगर आपको लगेगा सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, अब ये दृष्टि बनानी है सबको, सब आत्माएं भगवान की संतान हैं, सब अच्छे हैं, तो आपके चित्त में बहुत शांति रहेगी। देखो हमारा इसमें कुछ भी जाता नहीं है, कौन कैसा है, सभी में अच्छाई भी है, सभी में बुराई भी है, लेकिन अगर हमें अच्छाइयां दिखती हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है, और बुराई बुराई दिखती है, नफरत रहती है, ईर्ष्या द्वेष रहती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है। एक छोटी सी कहानी सुन लेंगे, आपको याद रहेगी। एक महात्मा कहीं सत्संग कराने गए, सत्संग हो गया, एक बहन ने पूछा कि कल आप कहा, निमंत्रण दिया कि कल आपको हमारे घर में भोजन करना है। महात्मा जी को ये पता था कि ये बहुत अशांत रहती है। महात्मा जी अपने कमंडल में थोड़ा गोबर भर के ले गए, भोजन बन गया था। माता जी ने पूछा कि भोजन करने से पहले एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, कौन सा? मेरा मन बहुत परेशान रहता है, अशांत रहता है, मैं कैसे इसको शांत करूं? ठीक है, कुछ बातचीत हुई, फिर कहा भोजन, कहा मेरे कमंडल में डाल दो। कहा आपके कमंडल में तो गोबर भरा है। बस यही कहा, आपने भी अपने कमंडल में? इधर उधर की बहुत गंदगी भर ली है, इसलिए शांत नहीं रह सकती। रहेगी कहानी याद, किचरा दूसरे का, जैसे किसी बहन ने अपने घर की सफाई करके अपना सारा कूड़ा एक प्लास्टिक की थैली में भर के बाहर रख दिया। आजकल रखते हैं ना, सफाई अभियान जब से चला लोगों में काफी सुधार आ गया, नहीं तो छत से नीचे गिरा देते थे सारा। अब थोड़ा सुधर गए, तो किसी ने सफाई करके कूड़ा बाहर रखा और आप गए उसका कूड़ा अपने घर में उठा लाए। कोई करेगा ऐसा? दुनिया में कोई नहीं करेगा, पर बुद्धिमान मनुष्य ये जरूर कर रहा है कि दूसरे की गलतियां, उनकी कमजोरियां, उनके अवगुण अपने घर में रख रहा है, मन बुद्धि में रख रहा है, इसलिए अशांति होती जा रही है। तो आत्मिक भाव सबको बनाना है। देखो अपने जीवन में खुशी, शांति, सुख, प्रेम भरने के लिए आप रोज एक बार नोट कर लेना इन बातों को, जिनके पास डायरी पेन है वो नोट करो, रोज एक बार इस संसार को इस नजर से देखना है कि सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, सबने अपने अपने शरीर लिए हुए हैं और सब बहुत अच्छे हैं। हमें पता है अच्छे नहीं हैं। अभी उग्रवादियों को थोड़ा ही कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दृष्टि ये रखनी है, अब उग्रवादी थोड़े हमारे सामने हैं कोई, सब हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो भगवान के बच्चे हैं, ये आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छे हैं। देखो आपको कितना सुख फील होगा, ये सोचते ही मन में एक सुखद फीलिंग होगी। दो अभ्यास हुए, मैं आत्मा हूं, सब आत्माएं हैं। ये अभ्यास कोई आपको सारा दिन रटने नहीं है, आप सवेरे इसका अभ्यास कर लो, फिर कर्म में दो चार बार इसको याद कर लेना। जैसे मैंने आपको भोजन बनाना है, मैं आत्मा यहां बैठकर हाथों से काम कर रही हूं, ऐसी आपको फीलिंग लानी है जैसे कार और उसको चलाने वाला ड्राइवर, दोनों अलग अलग, मैं इस कार का मालिक हूं, चलाने वाला ड्राइवर हूं, तो हाथों से हम काम कर रहे हैं। एक बार भी आपको सारे दिन में ये गुड फीलिंग हो गई तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। सहज है ना, बहुत सहज है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, आत्मा ही तो शरीर में रही है, तो हम चेतन हैं, हम सब जानते हैं। आत्मा निकल जाती है तो क्या हो जाता है, वही आंख वही हाथ पैर, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कॉन्शियसनेस, ये स्मृति हमें बढ़ानी है कि मैं आत्मा हूं। और कभी कभी आप ये एक बहुत सरल दूसरा अभ्यास कर लेना कि परम धाम से मैं आत्मा इस तन में आई हूं, ऊपर से उतरी यहां आ गई, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। अपने को बीच बीच में आत्मा देखना यहां, तो आपके कर्मों में सहजता हो जाएगी। आप एक चीज अनुभव करना, ये थोड़े थोड़े अभ्यास आप बढ़ाना अपने जीवन में, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कार्य शक्ति बढ़ गई आपकी। हमने जब ये प्रयोग कराए किचन में, तो अगर कोई काम 2 घंटे का होता था वो 1.5 में होने लगा। आप ये अनुभव करेंगे, आपके घर में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको यदि सिखा दिया जाए तो जो चीजें बहुत देर में याद होती थी वो सहज याद होने लगेंगी, बुद्धि की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। सुन रहे बच्चे, 2-3 तो बैठे हैं, सुनो सभी बच्चे, ध्यान दें, यदि आप ये अभ्यास करेंगे मैं आत्मा हूं, तो आपकी बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, याद जल्दी होने लगेगा। जो चीज याद नहीं होती बच्चे रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो ग्रहण शक्ति बुद्धि की बहुत बढ़ जाएगी। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास आपको कर्मों में करते रहना है कि बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा भगवान वो मेरे साथ है, ये नशा हो जाए आपको, ये ईश्वरीय नशा कहलाता है। जैसे आपके भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर से है ना सभी, आपके भुवनेश्वर में कोई बड़ा मंत्री आपका अपना आदमी हो, तो आपको ये रहता है ना, फलाना व्यक्ति हमारे साथ है, वो आपके साथ स्थूल में नहीं रहता, साकार में नहीं रहता, लेकिन आपको नशा रहेगा भाई कुछ भी काम होगा उसको फोन करेंगे, उसकी मदद हमें मिल जाएगी, वो हमें बहुत मदद कर देगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई वो हमें बचा लेगा। तो हम सभी याद रखेंगे भगवान हमारे साथ है, उसकी मदद हमें बहुत मिलेगी, वो हमारी बहुत केयर करेगा। ये बात आपको रोज रोज सुननी है। हम भी इस पर बहुत अटेंशन देते हैं, हमें तो लंबा काल हो गया ये सब करते हुए, लेकिन बहुत ध्यान देना होता है कि भगवान हमारा साथी है। तो हमारी शक्तियां कई गुनी हो जाती हैं। फिर जो हमारी शक्ति है उसमें कई शक्तियां और जुड़ जाएंगी, कई गुना शक्तियां। भगवान की शक्ति तो बहुत जबरदस्त है ना, वो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्तियां हमारे साथ हो जाएंगी और हमारे काम सहज होने लगेंगे। मैं योग की आपको एक और विधि बता देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर रहे कि योग में हमें क्या करना होता है। मन भटकता है, सबकी ये शिकायत होती है। देखिए, मन का काम तो संकल्प करना है ना, वो तो संकल्प कर रहा है। आज के संकल्प, कल के, परसों के, एक साल पहले, दस साल पहले के संकल्प उसमें आते रहते हैं। अब जो मैं बात आपको कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। वो बहुत बड़ा रहस्य है सृष्टि का, डीप सीक्रेट है हमारे मन के बारे में। हमारा मन तो सोच रहा है, या तो हम उसे सोच दे दें, नहीं तो वो खुद सोचने लगेगा। करेंगे भाई योग करना है क्या? नहीं, वो तो मैं समझ गया, फोन बजा है। सुन रहे ध्यान से, मन का काम है सोचना, वो तो सोचेगा ही, या तो हम सोच दें उसे, ऐसा सोचो, नहीं तो वो खुद इधर उधर का सोचेगा। उसे तो सोचना है, सोचना उसकी आदत है, मन है ही संकल्प शक्ति। अभी हमें ये सीख लेना है कि हम अपने मन को अच्छे संकल्प देते रहें, अच्छे संकल्प। वो अच्छे संकल्प क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, देखो अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कि ये जो ज्ञान दिया गया है, ये जो यहां आपको बातें सुनाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं हम कोई किताब नहीं सुना रहे आपको, कोई ग्रंथ नहीं सुना रहे हैं आपको, सीधा ज्ञान दिया जा रहा है। ये ज्ञान कहां से आया, कहां से आया ये ज्ञान? ये किताबों का ज्ञान नहीं है, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान दिया। भगवान टीचर बनकर धरा पर आए हैं, आप सभी को ये मालूम हो, ये बहुत बड़ी चीज है। इस संसार में सबसे बड़ी घटना हुई है कि भगवान टीचर बनकर आए हैं आप सभी के पास। उड़िया में एक किताब की आजकल बहुत चर्चा, आपके वहां है या नहीं है, पर बाहर उसकी चर्चा हो रही है, भविष्य मल्लिका है, मल्लिका, जस्ट मल्लिका। अच्छा, तो उसमें बहुत सारी भविष्य की चर्चाएं हैं, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे रिसर्च करने वाले उस पे काम कर रहे हैं आजकल। तो उसके बारे में जगन्नाथपुरी की बहुत सारी चर्चाएं आ रही ना कि वहां ये हो जाएगा, खून गिरेगा, ये होगा, तब कलयुग का अंत होगा। तो एक व्यक्ति और चर्चा कर रहा है, मुझे नाम तो याद नहीं रहा, कि 2024 का चुनाव होगा ही नहीं, और उसके बाद ये भारत की सत्ता एक सूर्यवंशी राजा के हाथों में चली जाएगी। आगे उसको पता नहीं चल रहा कि ये कैसे होगा और सूर्यवंशी कौन है, ये कुछ पता नहीं चल रहा। तो बहुत चर्चाएं हो रही है ना, 2023 ऐसा होगा, 24 ऐसा होगा, 25 ऐसा होगा, 25 तक की चर्चाएं बहुत कर रहे हैं लोग। तो ये सत्य है कि अब हम युग परिवर्तन के समय पर पहुंच गए हैं। ये महाविनाश का काल आ गया है, ये कलयुग की रात सतयुग के दिन में बदलेगी। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलती है ना, सब कुछ खेल घूम रहा है सब कुछ। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही, तो उससे पहले स्वयं भगवान आकर मनुष्य को सत्य ज्ञान देते हैं और मनुष्य के अंदर जो खूबियां हैं, जो दब गई हैं, मनुष्य के अंदर जो देवत्व है उसको जगाते हैं, मनुष्य को फिर से देवता बनाते हैं। तो ये वो समय चल रहा है। तो सभी को ये ज्ञात रहे, इस पूरे सृष्टि के चक्र में एक ही समय ऐसा होता है जब भगवान का मिलना आत्माओं से होता है, यानी मनुष्यों से होता है। वो समय चल रहा है। सोचने की बात है, भगवान ने यदि सृष्टि पे कुछ किया ही न होता तो उसकी महिमा क्यों होती। बिना कर्म किए किसी की भी महिमा नहीं होती है। सोचने की बात है, बहुत अच्छी तरह सोच लो, हम भगवान के बच्चे हैं। यदि हमारा दोनों का मिलन कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हो सकता है बाप और बच्चे कभी न मिलते हों, फिर भी भक्ति पूजा पाठ हो रही हो, उसका गायन पूजन हो रहा, उसकी तलाश हो रही हो, तलाश सिद्ध करती है कि उससे हमारा मिलन हुआ था, फिर से हम ढूंढ रहे हैं उसे, कहां हो तुम, उसने हमें बहुत कुछ दिया था इसलिए उससे हमारा प्यार बढ़ा हुआ है। तो ये वो समय चल रहा है जब भगवान इस धरा पर आकर सत्य ज्ञान देते हैं और हम सबसे मिलते हैं। तो ये राजयोग भगवान से मिलन का मार्ग है। इसकी बातें कई आप सुन चुके होंगे, अब दो बातें मैं और आपको सुना रहा हूं। भगवान ने आकर हमें जगाया है, एक तो होता है रोज की नींद से जगाना, एक है हम नींद में सो ही गए थे। कौन सी नींद में? अज्ञान की नींद में हमें जगा दिया है, जागो, और कुछ याद दिलाया। सबसे पहली चीज याद दिलाई, तुम देवता थे, किसी ने याद नहीं दिलाया था। ये केवल देवताओं की पूजा कर लो, उनके मंदिर बना लो, उनका आह्वान कर लो यज्ञ हवन में, इतना ही सिखाया जाता था। पर किसी ने ये नहीं बताया कि तुम देवता थे। आप सब जो यहां बैठे हैं, आपको इस रहस्य का पता नहीं है कि आप यहां क्यों आ गए हैं। आप तो कहेंगे हमने टिकट बनवाया यहां आ गए, इसमें क्या हुआ। लेकिन बहनों ने कितनी बार आपको कहा होगा चलो, बोलो कोई बताए। कोई कोई तो आते हैं कहते हैं 10 साल से बहन जी हमें कह रही थी, हर साल कहती थी चलो, 10 साल बाद हम आए, अब पता चला कितनी देर कर दी हमने। 10 साल पहले आ गए होते तो हमारे जीवन में लाइट आ गई होती। तो आप सभी जो यहां बैठे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, देव कुल की आत्माएं हो, सतयुग में आप सभी, सतयुग में आप सभी, हम सभी देवता थे। ये जो भारत है ये देवताओं की भूमि है, यहां देवता थे और एक बात और बताऊं, आजकल लोग थोड़ी थोड़ी खोज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। भारत में जो हिंदू मुसलमानों का बहुत विरोध सा चलता है ना, ये गलती है। मौलाना ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, नफरत पैदा करते रहते हैं, कुछ हिंदू लोग करते रहते हैं। ये सत्य सबको जानना चाहिए कि मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जितने धर्म हुए, सबके मूल, सबके संस्थापक हिंदू ही तो थे। महात्मा बुद्ध का धर्म कौन सा था, सोच के उत्तर देना, मैंने छोटा प्रश्न नहीं पूछा है। महात्मा बुद्ध जब महात्मा बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, तब उनका धर्म कौन सा था, सनातन धर्म ही था ना, या बुद्ध धर्म था। बुद्ध धर्म तो बाद में स्थापित हुआ, और वो भी धर्म नहीं स्थापित हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, संघ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी। धर्म नाम बहुत बाद में पड़ा। ऐसे ही मुस्लिम्स के भी जो संस्थापक हुए हैं वो सब हिंदू थे। हिंदू ही पूर्वज हैं सभी धर्मों के। सिख धर्म को ले लीजिए आप, गुरु नानक देव का कौन सा धर्म था, तब सिख धर्म था क्या, था ही नहीं। हिंदुओं के ही तो वो संत थे, उन्होंने एक नई परंपरा दी मनुष्य को, उसको लोगों ने फॉलो किया, उसका नाम बाद में सिख धर्म पड़ गया। तो हम सभी देवी देवता थे। इब्राहिम के बारे में तो बहुत चर्चाएं होती है कि उनका नाम इब्राहिम बाद में पड़ा, नाम था अभेराम, अभेराम से इब्राहिम बन गया है। तो सबके मूल आदि, आदि पिता कह दो सबके, वो हिंदू ही थे, सनातन धर्म वाले थे। तो हम सब देवी देवता थे, याद करो। भगवान ने आकर हमें जगाया और याद दिलाया, तुम देवता थे, जागो, तुम्हारे अंदर देवत्व है, तुम्हारे अंदर प्योरिटी है, उसको जगाओ। याद दिलाया, तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो, तुम इस सृष्टि की पुण्य आत्माएं हो, तुम बहुत महान हो। इसको कहा जाता है स्वमान। जिन्होंने थोड़ थोड़ा भी ज्ञान लिया आप में से, वो इस शब्द को जानते हैं। जान लेना, ये योग साधना में बहुत सुंदर अभ्यास है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनने लगते हैं। मैं देव कुल की आत्मा हूं, तो हमारे अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है वो जगने लगेगा, और हमारा जीवन देवताओं जैसा बनने लगेगा। तो हम देव कुल के हैं, इस स्वमान में रहने से हमारा जीवन बहुत महान बन जाता है। तो एक अभ्यास करना है आत्मा समझने का, आत्मा देखने का, दूसरा अभ्यास करना है स्वमान का। इससे आपको, आप बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे, इससे आपको सबका सम्मान मिलेगा। अब एक सीक्रेट आपके सामने रख देता हूं, परमात्मा से हमें कुछ मांगना नहीं होता, तो बिना मांगे कैसे देगा वो, बताओ। याद करना है। देखो एक उदाहरण देता हूं, और बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत गुह्य रहस्य वाली है। अब आकाश में सूरज इधर को ढल रहा है, हम हॉल में बैठे हैं, सूरज को देख नहीं सकते आंखों से। अब आप अपने बुद्धि के नैन से सूरज को देखो, इधर वो अब ढल रहा है, देख सकते हैं ना, बिल्कुल सहज बात है। जैसे ही आपने उसको देखा, बुद्धि से देखा, उससे आप जुड़ गए हैं एनर्जी के माध्यम से, सूक्ष्म एनर्जी आपकी उसको जाने लगेगी, उसकी आपको आने लगेगी। आपने यहां ज्ञान सरोवर में आज कोई फूल देखा है बाहर, बहुत अच्छा लगा आपको, अभी उसको देखो कितना अच्छा फूल है वो, उससे आप जुड़ गए, आपकी एनर्जी उसको जाने लगेगी, फूल की आपको आने लगेगी। हर चीज में एनर्जी है, क्लियर है ना। आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसे आप यहां से याद करो, आप उससे जुड़ गए, आपकी एनर्जी उसको उसकी आपको आने जाने लगी। ये सिद्धांत है योग का, जुड़ गए ना, दो जुड़े। हम परमात्मा के स्वरूप को देखें परम धाम में, देखो यहीं से अब मां ज्योति चमक रही है परम धाम में, उससे हम जुड़ गए, उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। मांगने की जरूरत नहीं, आपने उसे याद किया, शांति के सागर हैं, शांति आने लगी। आपने उसे याद किया, प्यार के सागर हैं, उसके प्यार की तरंगे आने लगी। आपने उसे याद किया, सुखदाता हैं, सुखों की फीलिंग होने लगी। यह है योग का तरीका। तो हम उनसे कुछ मांगते नहीं, उनसे बुद्धि लगाते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं भिन्न भिन्न संकल्पों के साथ। जिस संकल्प के साथ उसके स्वरूप पर बुद्धि लगाएंगे, वही चीज हमें आने लगेगी। इसका सबको अभ्यास करना है, थोड़ा बैठकर भी और थोड़ा थोड़ा कर्मों में भी। अब मुझे कहा है कुछ क्वेश्चन आपके हों तो आप पूछ लें। और पहले मैं एक बात बता दूं,
कल भी
एक भाई मिले पूछने, कल एक भाई मिले कि उनके किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर, इधर गड़बड़ है, आजकल ये संसार में बहुत बढ़ गई है बीमारी, और इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती दुनिया में, क्योंकि वो मन से शुरू हो रही है, वो ब्रेन में नहीं हो रही है, ब्रेन तो उसका स्थूल हिस्सा है, ब्रेन में तो बाद में हो रही है, वो पहले मन में हो रही है। जैसे डिप्रेशन होता है मनुष्य का, तो डिप्रेशन मन में होता है, लेकिन ब्रेन में उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ब्रेन को डॉक्टर ठीक करेंगे, लेकिन मन से फिर आने लगेगा वही, फिर वही हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं हमने 3 साल दवाई खाई, फिर हम तो वैसे के वैसे ही हो गए। अब देखो एक बहुत अच्छी विधि है, जिसको इधर की कुछ प्रॉब्लम हो, भिन्न भिन्न नाम है इसके, एंग्जाइटी हो गई है, सिजोफ्रेनिया हो गया है, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, बहुत सारे नाम साइकेट्रिक डॉक्टर्स ने इसके दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथ मलेंगे, अभी मलें, और 3 बार याद करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, करो अंदर में, अच्छी तरह हाथ मलेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखो ऐसे छोड़ो हाथ, आ गए वाइब्रेशंस। अगर आपको घुटने दर्द है तो इसको घुटनों पे रख लो, आप कहीं लोगों के पास बैठे हैं जहां आप हाथ नहीं मल सकते, हाथ ऐसे ही रख लो और मन में अभ्यास कर लो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। तो हाथों से एनर्जी घुटनों में जाएगी, ठीक करेगी। 1-2 मिनट रखना अंदाज से, फिर दोबारा, फिर हाथ रखेंगे, फिर 3री बार, फिर हाथ रखेंगे, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। तो जो दिमाग की बीमारियां ये हो रही हैं मन की, इनमें ऐसे रखेंगे। ये हाथों से एनर्जी ब्रेन को जाएगी, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जब मैं ये प्रयोग करता था तो मैं एक चीज देखता था कि सिर अगर थोड़ा भी गर्म है, चाहे वो गर्मी से गर्म हो चाहे अंदर की स्थिति से गर्म हो जाती है ना, ब्रेन गर्म हो जाता है, आप एनर्जी देंगे 3 मिनट में इसे ठंडा, इससे ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो जैसे डांस करने लगेंगे, एनर्जी मिलेगी उन्हें, वो एक्टिव हो जाएंगे और ब्रेन बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। ब्रेन ही अनेक बीमारियों को कंट्रोल करता है, ठीक हो जाएंगी बहुत चीजें। मैं बहुतों को कराता हूं, बहुत अच्छे अनुभव इसके आए हैं, अनेक बीमारियों में फायदा हुआ। माइग्रेन बहुत बहुत समय के लोगों के ठीक हो गए, 21 दिन में, 25 दिन में। कई माताओं की आंखें खुल गई जो ब्लाइंड हो गई थी, खुल गई। अभी भी एक केस प्रयोग में है, 12 साल की लड़की बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। मैंने पूछा बचपन से है या बाद में हुई, कि नहीं बाद में हुई है, तेज बुखार हुआ था तब हो गई थी, उस पे चालू है। मुझे विश्वास है अगर वो परिवार रेगुलर करेगा और विश्वास से, तो उस लड़की की आंख भी खुल जाएंगी। तो बहुत बड़ी चीज है ये, ब्रेन को एनर्जी देना। आप अगर रोज दे दें बहुत अच्छा होगा। किसी को आपके घर में नींद नहीं आती है, जब वो सो जाए उसके पीछे सिराने बैठकर ब्रेन को एनर्जी देने लगे, 5-7 मिनट में वो सो जाएंगे। आप ये अनुभव करेंगे। अब क्वेश्चन आपके, बोलो, खड़े होके पूछ लो जरा। हैं? खाली तो मन कभी रहता नहीं, मन की जो सोचने की स्पीड है उसको धीमा कर दिया जाता है, यानी एक संकल्प पर ला दिया जाता है। वो ऐसा ही लगेगा आपको कि मन साइलेंट हो गया। इसको मन खाली नहीं कहते, मन को साइलेंट करना, ठीक है।
अभी आगे आगे आ जाए तो अच्छा, माइक से आके बहुत दूर से वहां पूछेंगे नहीं, आ जाएंगे करीब में आकर के, फिर आप प्रश्न पूछेंगे भाई जी से।
सुबह करना तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि सुबह सुबह की एक दूसरी बात होती है कि मनुष्य का ब्रेन ही डल रहता है। ठहर जाओ। तो ब्रेन डल रहता है, अगर आप स्वमान के, आप समझो 12 स्वमान लिख लो, उनको याद करने लगो ऐसे ही, तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, योग बहुत अच्छा होगा। लेकिन दिन में भी बीच बीच में उसे याद करना चाहिए, तो ब्रेन पर बहुत गहरा इफेक्ट रहेगा, एकाग्रता अच्छी होगी।
ओम शांति भाई।
बोलो।
मेरी बेटी, उसका ऊंट में स्किन हो गया, काफी डॉक्टर को दिखाया, वो नहीं ठीक हुआ।
क्या हो गया?
स्किन प्रॉब्लम है ऊंट में, ये पूरा।
पानी चार्ज करो, लगाओ उसके ऑटो पर और पिए भी। वो पानी चार्ज करने की विधि है, पानी को दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ
जी,
लगाओ और पिलाओ और ब्रेन को एनर्जी दिलाओ, क्योंकि गड़बड़ यहाँ होती है
जी।
ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना और लगाना कई बार
जी,
ठीक हो जाएगी।
और
आते जाओ। बोलो,
अभी दोनों लोग आ जाए, इधर आके खड़े हो जाएंगे, यहाँ से इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ।
भाई जी, मेरे एक बेटे, वो बचपन में अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन वो 2-4 साल क्या हो ना, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। जब भी पढ़ाई करने का सोचता है, वो बोलता है कि मैं पढ़ाई करना सोचता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट में मन इधर उधर भटक जाता है।
मन भटकना या मोबाइल तो नहीं दे दिया?
हाँ जी, मोबाइल तो हर वक्त उसके पास।
ये तो आपने उसके मन को भटकाने का प्रोग्राम दे दिया है।
मैं तो नहीं दिया भाई, वो खुद ही।
आजकल बच्चों को ये बहुत है, जब वो सो जाए उसके ब्रेन को एनर्जी देना, और संकल्प देना कि ब्रेन ये मोबाइल छोड़ दो। बच्चे जो मोबाइल में लग गए समझो वो कुछ नहीं कर सकेंगे जिंदगी में, बचा देना। ब्रेन को एनर्जी देंगे तो उसका ब्रेन काम करेगा ठीक।
ओम शांति जी, जैसे आपका एक तो क्लास में सुनी थी अमृत वेला में विघ्न विनाश भट्टी नहीं करना चाहिए,
तो अमृत हाँ आगे
क्यों नहीं करना चाहिए,
क्यों नहीं करना हाँ, चाहिए
और क्योंकि दूसरे टाइम में मैंने जैसे एक घंटा बैठ के वो नहीं होता है, अमृत वाला टाइम 12 होता है।
नहीं, दूसरा भी हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। ये तो मनुष्य की इच्छा पर है ना, अगर आपके जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं तो आपको कोई भी टाइम निकालना ही चाहिए। विघन बहुत बड़ी चीज होती है जो मनुष्य को नष्ट कर डालता है। अमृत वेला आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, उसमें परमात्मा से वरदान लेने का समय होता है, ईश्वरीय सुख पाने का समय होता है। इसलिए उस टाइम के अलावा अगर करेंगे तो वो ज्यादा काम करेगा। टाइम तो सबके पास है निकालने की बात है। मैं कभी नहीं मानता कि टाइम नहीं है, मेहमान आ जाए उनको हैं 3 से 4 कर लो, 3 बजे उठ जाओ, 4 से 5 के अलावा कभी भी कर लो, 5 से 6 कर लो, 6 से 7 कर लो, ऐसे कर लो। हाँ देखिए, ये मोबाइल से कैसे छुड़ाया जाए ये तो खुद उत्तर है कि उन्हें मोबाइल से छुड़ाओ। लेकिन आजकल क्योंकि माताएं मोबाइल बच्चों को खिलौनों के रूप में दे देती हैं कि हमारा सिर खा रहा है, ले मोबाइल, लग जा इसमें, कार्टून देखने लग। माताओं ने भी ताली बजा दी, कार्टून देखता रहे, इसमें लगा रहे, हमें काम करने दे। तो ये तो एक परंपरा बन गई है और माताएं खुद ही बहुत लगी रहती हैं। बहुतों की तो कहानी है कि जब बच्चा गर्भ में था माँ बहुत सारा फोन यूज करती थी क्योंकि खाली थी। बच्चे का जन्म हुआ, 1 मास का होते ही मोबाइल छीनने लगा कि मैं भी बात करूंगा, ये होता है। तो ये तो अब इसका कुछ मार्ग निकालना है, उन्हें कोई और अच्छी चीज दे दी जाए ताकि उनका इससे जो खिंचाव है वो कम हो जाए। बोलो बोलो, कुछ नहीं करो आप, चलो ऐसे ही बोलो।
अगर कोई आत्मा बार बार गलती करे और अगर उसको मैं समझाती हूँ तो बोलते हैं कि एक ही बात क्यों बार बार बोल रही, वो एंग्री हो जाते हैं तो मेरी स्थिति भी खराब हो जाती है।
उसके भी खराब, आपकी भी खराब। इसलिए बार बार न कहो, एक ही बार अच्छी तरह प्यार से सवेरे स्वमान को याद करके फिर बहुत प्यार से कोई अच्छी बात कहना। बार बार कहने से मनुष्य इरिटेट होता ही है और वहां सालों साल बोल रही है तो और परेशान हो जाएगा वो। हाँ नहीं, थोड़ा सा स्वमान का अभ्यास करके ज्यादा न बोलो। बल्कि अगर आप ऐसा कर लो 15 दिन बोलो ही नहीं, बोलो माना उसको कहो ही नहीं कि ये सुधारो, फिर देखना रिजल्ट। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ते हैं।
और कोई है तो आएंगे, भाई भी, बहने भी, माताएं भी।
हाँ बोलो, जोर से बोलो यहीं से। प्रेम और मोह पूछ सकती हो, थोड़ा ही क्वेश्चन आंसर चल रहे, आ गया हो अभी तक यही पूछ रही, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, प्रेम और मोह। मोह होता है देह से, जैसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया पालना की तो उसे अटैच हो जाती है, मोह हो ही जाता है। लेकिन प्यार होता है आत्मा समझने से, आत्मिक दृष्टि से। इसलिए मोह को आत्मिक प्रेम में बदलने से दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा और प्रेम बढ़ने से मोह घट भी जाएगा। तो मोह है दैहिक, प्रेम है आत्मिक।
ओम शांति भाई, वो रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है, प्रॉब्लम है
तो एक्सरसाइज,
कैसे करनी होगी?
नहीं, वो तो सिखाएंगे ना फिजियोथेरेपी वाले आपको जी। और मैं यहाँ सिखाऊंगा नहीं
जी, जी।
वो फिजियोथेरेपी वालों के पास जाओ, वो आपको सिखाएंगे। और भी एक अच्छा ट्रीटमेंट आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो प्रोग्राम है भारत में और संसार में बहुत चल रहा है, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और कई हीलिंग प्रोसेस चल रहे हैं, उनसे भी ठीक हो जाता है। आप एक्यूप्रेशर वाले को ढूंढ लो, मिल जाएगा, नेट पे ढूंढो, आपके आसपास ही कोई होगा, उससे ट्रीटमेंट ले लो।
प्राय कहीं डर लगुच सदा बाहर गला घरे कि बाहर गला डर
क्या बोला भाई?
भाई जी बोल रहे इनको काफी टाइम इनको भय लगता है, जब घर में रहते हैं कुछ नहीं लगता है, घर से बाहर निकलते तो इनको भय लगता है।
मैंने कल भी सुनाया था, फिर से सुन लो ध्यान से, सभी सुन लो, क्योंकि भय संसार में बहुत बढ़ेगा। सवेरे उठते ही 21 बार लिखना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, याद रहेगा, निर्भय हूँ, दोनों, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, 21 दिन रोज 21 बार, भय भाग जाएगा, भय आपसे भयभीत होने लगेगा। बोलो।
ओम शांति भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, वो तो मेरे गुस्से में कैसे कंट्रोल?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसलिए धन्यवाद, वो सबको ही आता है। देखो, इसने बहादुरी करके आगे आगे प्रश्न पूछा, रोज सवेरे उठकर आप भी 21 दिन 21 बार रोज लिखना, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। बोलो क्या लिखोगे? मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। कब लिखेंगे? उठते ही, उठते ही। अगर उठते ही पहले 10 मिनट में लिख लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, याद रहेगा, लिखना। क्योंकि क्रोध बुरी चीज है, जो बच्चे पढ़ते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, तो बहुत नुकसान हो जाता है, फिर आप बुद्धिमान हो जाएंगे, क्रोध को जीत लेंगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा आपका। चलो, आपका भी लास्ट, बोलो, खड़े होके बोल दो। एक तो ब्रेन को एनर्जी देना, दूसरा स्वमन का अभ्यास और ज्ञान ले लेना। स्वमान की बहुत सारी बातें हैं, उससे नई चीजें प्रिंट हो जाएंगी, वो गांठ वांठ सब भाग जाएगी। चलो, अभी 3 मिनट योग लगा के क्लास समाप्त करते हैं।